ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल में प्रसारण होने वाले विदेशी टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापन रहित सामग्री ही प्रसारित किए जाने के प्रावधान का कल से होगा क्रियान्वयन। उत्पादनशील उद्योगों को नेपाली श्रमिक उपलब्ध न होने की स्थिति में विदेशी कामगार रखने की अनुमति देने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। काठमांडू घाटी में 1552 लोग समेत आज देशभर 3637 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की हुई पुष्टि। 21 लोगों की हुई मौत। 3215 हुए संक्रमण से मुक्त। कोरोना परीक्षण और संक्रमितों का निःशुल्क इलाज करने का सरकार को नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने किया आग्रह। और विश्वभर में कोरोना वायरस के कारण हुई 11 लाख से अधिक की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में प्रसारित होने वाले विदेशी टेलीविजन चैनल कल से सिर्फ विज्ञापन रहित सामग्रियां प्रसारित कर पाएंगे। मंत्रिपरिषद की इसी कार्तिक 4 गते हुई बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंहदरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि कल से सभी विदेशी टेलीविजन चैनलों को क्लीन फीड की नीति लागू करनी होगी। मंत्री गुरुंग ने आगे ये कहा कि अब से विदेशी विज्ञापनों का डबिंग प्रसारण भी नेपाली प्रसारण माध्यम नहीं कर सकते। बैठक ने बजट के लिए प्राप्त होने वाले 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात करीब 24 अरब रुपए बराबर का सहूलियत ऋण स्वीकार करने का भी निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने नेपाली श्रमिक उपलब्ध न होने की स्थिति में उत्पादनशील उद्योगों को विदेशी कामदार रखने की अनुमति देने, नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी के तदर्थ समिति का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विधान 1986 को अनुमोदन करने के लिए संघीय संसद में पेश करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने कई अन्य निर्णय भी किए। काठमांडू घाटी में 1552 लोग सहित आज देशभर में 3637 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ जागेश्वर गौतम से मिली जानकारी के मुताबिक 15255 लोगों का पीसीआर परीक्षण किया गया, जिनमें से काठमांडू घाटी में 1552 सहित देशभर में 3637 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। काठमांडू में 1283, ललितपुर में 157 और भक्तपुर में 112 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही नेपाल में कोरोना संक्रमित होने वाले की कुल संख्या 1,48,509 पहुंची है। आज 3215 लोग संक्रमण से मुक्त होने के बाद वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या 1,02,820 पहुंची है। ये जानकारी प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर गौतम ने दी। इसी तरह आज 21 लोगों की वायरस के संक्रमण से मौत होने के बाद वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 812 पहुंची है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कोरोना परीक्षण और संक्रमितों का निःशुल्क इलाज करने की सरकार से मांग की। सभापति देउवा ने नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर इलाज तक का सारा खर्च निःशुल्क करने की व्यवस्था मिलाने का प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर 3 देशों के लिए आज राजदूत नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान के मुताबिक बेल्जियम के लिए गेहेंद्र राज भंडारी, पाकिस्तान के लिए तापस अधिकारी और जर्मनी के लिए राम काजी खड़का को राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमरे द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
14-15
बजारमा नयाँ के थाहैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन ने 3,21,000 नकली नोट सहित मकवानपुर की रक्सीरांग गांवपालिका 8 के 26 वर्षीय जीत बहादुर लोपचन को गिरफ्तार किया है। नकली नोटों का कारोबार होने की सूचना के आधार पर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर आज सार्वजनिक किया। नकली नोटों के कारोबार में शामिल अन्य 2 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। ये जानकारी चितवन जिला के प्रहरी प्रमुख नांतिराज गुरुंग ने दी। डोलपा जिला अस्पताल में पहली बार वेंटिलेटर जोड़ा गया है। कर्णाली प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के सहयोग में वेंटिलेटर जोड़ा गया है। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार ने नियमित गश्ती के दौरान तस्कर के हमले में जान गंवाए प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद बिक और प्रहरी जवान राम बहादुर साउद के परिवारों को राहत उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। आज के मंत्रिपरिषद के बैठक ने मृतक प्रहरी के परिवारों को जन ही 1,00,000 रूपये के उपलब्ध कराने और मृतक के बच्चों के नाम में खाता खोलकर 1,00,000 और रुपए जमा कर देने का निर्णय किया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख स्वकीय सचिव शिव सिंह ओली ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,16,57,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,10,16,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पर 11,38,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, जहां 85,95,000 से अधिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 2,27,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसी तरह भारत में 77,27,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं और 1,17,000 से अधिक की जान चली गई है। ब्राजील में 53,00,000 से अधिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,55,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह रूस में 14,63,000 से अधिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 25,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। और स्पेन में 10,46,000 से अधिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 34,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेपाल में प्रसारण होने वाले विदेशी टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापन रहित सामग्री ही प्रसारित किए जाने के प्रावधान का कल से होगा क्रियान्वयन। उत्पादनशील उद्योगों को नेपाली श्रमिक उपलब्ध न होने की स्थिति में विदेशी कामगार रखने की अनुमति देने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। काठमांडू घाटी में 1,552 लोग समेत आज देशभर में 3,637 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की हुई पुष्टि। 21 लोगों की हुई मौत। 3,215 हुए संक्रमण से मुक्त। कोरोना परीक्षण और संक्रमितों का निःशुल्क इलाज करने का सरकार को नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने किया आग्रह। और विश्वभर में कोरोना वायरस के कारण हुई 11,00,000 से अधिक की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।